illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mursalin Abil Kasim Muhammed. Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. وآله الطيبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني يشر أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الأزل إلى الأبد أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد الأصر إسلامك سنتر मेलबर्न की आज की ये मजलिस शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के हवाले से भी है और करबला के शहीदों का 30वां ये मजलिस जब मैं पढ़ता हूं तो मेरे जहन में ये ख्याल भी आता है कि हमारी रीसेंट हिस्ट्री के एक अजीम तरीन मर्जी जिनका इतना ज्यादा हौज़ाए इल्मिया में असर अब तक है उनकी बरसे की मजलिस भी होनी चाहिए लेकिन चूंकि वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं होती और फिर आजकल क्योंकि अभी भी मेलबर्न और विक्टोरिया में लॉकडाउन भी है और रात का कर्फ्यू भी तो मजलिस को अपने वक्त में मुकम्मल करना है। ये मजलिस जो हम कर रहे हैं हुकूमत के कानून के दायरे में रह के कर रहे हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल अंदाज से ये मजलिस हो रही है। आपने तिलावत भी सुनी, आपने सोज़ो सलाम भी सुना, आप बाद में नोहा खानी भी में भी शिरकत करेंगे। मजलिस भी अज़ा खाने के अंदर हो रही है, किसी के घर में नहीं। मिंबर भी है, दाएं और बाएं वो तबर्रुकात भी हैं कि जो सबब बनते हैं अहले बैत अतहार की हाजिरी के गम के बयान के साथ साथ। तो ये मसला नहीं है कि हमें कोई 10-15 मिनट में बयान मुकम्मल करना है लेकिन एक घंटे का बयान काफी होता है, उसमें बहुत सारी बातें जमा नहीं हो सकती। तो खाली इशारतन तस्किरा करते हुए कि मेरी मुराद थी हजरत आयतुल्लाह लुज़्मा आगाए सैयद अबुल कासिम अल खुई से, जिनके असरात हौज़ाए इल्मिया चाहे कुम हो चाहे नजफ हो उसमें अब तक हैं और जो उनकी इल्मी खिदमात हैं। बस इससे ज्यादा मैं बयान नहीं करना चाहता। 8 सफर 1412 हिजरी को मैं एले में मजलिस पढ़ रहा था कि जब उनकी वफात की खबर आई, लेकिन वो और उनसे पहले के एक दो मर्जे ऐसे जिनकी वफात के बारे में अब तक ये इम्कान कवि है कि उन लोगों को जहर दे के शहीद किया गया, लेकिन फिर वो एक अलग मौजू होगा। इंशाल्लाह जिंदा रहा तो बात की किसी मजलिस में ये बात आ जाएगी। आज के मजलिस की अपनी दो मुनासिबतें। कुरान की सिर्फ एक आयत की मैंने तिलावत की है लेकिन ये एक आयत इस्लाम का एक ऐसा उसूल बताती है, एक रूल, एक फार्मूला, एक कानून, एक कायदा जो कॉमन सेंस के मुताबिक भी है और आम दुनियावी जिंदगी में जो आदमी इसकी पाबंदी ना करे लोग उसको कंडेम करते हैं। हाँ, आखिरत में जब हम इसी रूल को लेके आते हैं तो रूल की पाबंदी करने वाले को कंडेम किया जाता और वो रूल यह है कि वह तज़व्वुदु, सामान तैयार करो, फ़इन्ना खैर ज़ादे तक्वा, बेहतरीन सामान तक्वा है, वत्तकूनी या उलिल अलबाब, ऐ अकल रखने वालों मुझसे डरते रहना। सूरह बकरा की आयत है, हज की आयतों के बीच में यह आयत आई है। लेकिन जो रूल इसमें बताया गया वो खाली हज का नहीं, और वो रूल क्या बना, वो रूल ये बना कि हर वो काम जो तुम्हें फ्यूचर में करना है उसकी प्रिपरेशन पहले से होनी चाहिए। और यह कुरान ने हज के हवाले से कहा, तो हज तो हज, हम दुनिया का एक आम सा ट्रेवल भी करते हैं तो इसका ख्याल करते हैं, प्रिपरेशन होती है पहले से। और जो ज्यादा ट्रेवलिंग करते हैं उनको मालूम है कि एक लिस्ट उनके पास तैयार होती है अपनी ट्रेवलिंग के लिए, कि जब ट्रेवल करेंगे क्या क्या सामान लेके जाना है, बल्कि उसमें बहुत सी चीजें ट्रेवलिंग से पहले ही खरीद के रख ली जाती हैं। अब ये ट्रेवलिंग तो छोड़िए, अगर हमको वीकेंड पे ग्रोसरी करना है तो हम जो सही लोग हैं कॉमन सेंस रखने वाले, वो पहले से एक लिस्ट बना के जाते हैं और वही लोग फायदे में रहते हैं। बल्कि बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन होता कि लिस्ट बना के जाओ ताकि फजूल चीजें ना खरीदो और अपने बजट में रहो। लेकिन ये बातें शायद मैं जरा सा फजूल कर रहा हूं। खुलासा ये कि हर वो चीज जिसका होना यकीनी है, कंफर्म है ये बात हो के रहेगी, उसकी पहले से प्रिपरेशन करना है। बल्कि कॉमन सेंस तो कहती है कि जो चीजों के बारे में खाली चांस है उसके लिए भी प्रिपरेशन करो। यहां भी मैंने देखा है, और इंग्लैंड में तो खैर इतने इस पे जोक भी बन गए कि सुबह सूरज चमक रहा है और ऐसा लग रहा है, इतना शाइनिंग सन है कि ऐसा लग रहा है कि सारा दिन गर्मी रहेगी, लेकिन लोग अम्ब्रेला साथ लेके निकल रहे हैं। हत्ता ये कि यहां तो लोग शायद फिर भी वेदर की रिपोर्ट पढ़ते हैं, इंग्लैंड में वेदर की रिपोर्ट भी नहीं पढ़ते, जो हर घंटे के बाद चेंज हो जाती। तो ये जो उसूल है कि पहले से तुम्हें तैयार होना है फ्यूचर में पेश आने वाली चीजों के लिए। अच्छा, अब ये दुनिया के एतबार से तो हर आदमी इस चीज को जानता, और जो आदमी प्रिपरेशन न करे लोग उसी को बुरा कहते हैं। आप में से अक्सर के घरों में, शायद हमारे इंडिया पाकिस्तान में कल्चर कम हो, लेकिन अक्सर घरों में एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है, चाहे वो उस तरह का प्रॉपर ना हो जो गवर्नमेंट रिकमेंड करती है, लेकिन एक आध एस्पिरिन, थोड़ी बहुत बैंडेज, बच्चा है तो जख्मी ना हो जाए, सारी चीजें पहले से होती है ना। और बहुत सारी उसमें से ऐसी दवाइयां हैं जिनकी जरूरत ही नहीं पड़ती, वो एक्सपायर होती है, उसको उठा के फेंक देते हैं, फिर भी घर में रखते हैं। और जो आदमी ऐसा ना करे, और ऐन वक्त पे जरूरत पड़ी, बच्चा है, उसका हाथ कट गया, खून निकलने लगा, ना कोई कॉटन है ना बैंडेज है, लोग उसी को बुरा कहते हैं। भाई तुम बच्चों वाले घर में हो, ये चीजें रखा करो। लेकिन जब आखिरत की बात आती है, अब ये दाढ़ी आखिरत की प्रिपरेशन है, ये हिजाब आखिरत की प्रिपरेशन है, ये म्यूजिक से अपने आप को बचाना आखिरत की प्रिपरेशन है, ये हराम माल से अपने आप को महफूज रखना ये आखिरत की प्रिपरेशन। वहां पे लोग मजाक उड़ाते हैं। मूतु कबलान तमूतु की बहुत मशहूर हदीस, मौत आने से पहले अपने आप को मार दो, यानी इतना वेल प्रिपेयर्ड होके बैठ जाओ कि जिस वक्त भी मलकुल मौत आए तुम कहो कि मैं तैयार हूं। चलो, अब इसके ऊपर तो पूरी एक अलग मजलिस हो सकती है, ये आज का मौजू नहीं। तो हर चीज के लिए जो यकीनी है कंफर्म, बल्कि जिसके चांसेस हैं तैयार हो जाना, ये कॉमन सेंस भी कहती है, ये इस्लाम भी कहता। चुनांचे पैगंबर की एक हदीस भी है। अच्छा, आपको पता है कि मेरी मजलिसें लोगों को पसंद तो आती नहीं, तो लोग जो है वो जो मजलिसों की बिल्कुल सिंपल सी बातें उसके भी जोक बना लेते हैं। अब ये पैगंबर की एक हदीस है, मैं पढ़ता हूं, लोग कहते हैं मौलाना ये हमको ना सुनाइए, ये चोरों को सुनाइए। कद्दिम अल-खुरूज क़ब्ल अल-वुलूज, कहीं किसी जगह जाने से पहले निकलने का रास्ता देख लो, कहीं एंटर होने से पहले देख लो कि एग्जिट कहां है। अब जैसे पब्लिक प्लेस में होता है कि फायर एग्जिट चेक कर लो कि कहां पर है, लेकिन अब जब मैं ये हदीस पढ़ता था कि पैगंबर कहते हैं कि जब भी कहीं एंटर हो रहे हो तो पहले देख लो कि यहां से निकलने का रास्ता क्या है, जो करते थे लोग, मौलाना ये हदीस हमको नहीं सुनाइए, जाके चोरों में मजलिस पढ़ने ना उनको सुनाइए कि जब किसी घर में चोरी के लिए एंटर हो तो पहले से रास्ता देख लो कि अगर घर वाला जाग गया। खैर, वो हदीस रसूल का मजाक है, इसलिए मुझे वो तकलीफ तो होती है, लेकिन मेरी मजलिस का मजाक तो नहीं। तो ये जो उसूल है, खुरूज क़ब्ल अल-वुलूज, खुरूज कहते हैं एग्जिट, वुलूज कहते हैं एंट्री, ये जिंदगी के हर मरहले में काम आने वाली चीज है, आखिरत में खास तौर पर। और अब इससे जो बात मैं आपके सामने कहने वाला हूं, ये एक बहुत अहम मौजू, शायद आज कंप्लीट भी ना हो सके, तो फिर इसके बाद अरबईन का खमसा आ रहा, इंशाल्लाह जिंदा रहा तो थोड़ा सा मौजू उसमें होगा। लेकिन पहले एक जुमला कह दूं, जो इस जुमले की अभी तशरीह नहीं कर रहा हूं, कि आपकी ये समझ में आ जाए कि ये वाला सब्जेक्ट या टॉपिक मैंने आज के मजलिस के लिए क्यों किया। करबला जाते वक्त भी इमाम हुसैन, इमाम मजलूम पहले से तैयारी, खवातीन को लेके जा रहे करबला के लिए नहीं, करबला के बाद के लिए। छोटे छोटे बच्चों को, नन्नी सकीना को लेके जा रहे हैं करबला के लिए नहीं, शाम के कैद खाने के लिए। तो खैर, अब ये बात इसकी, इस जुमले की तशरीह बाद में होगी, थोड़ा सा पहले अपने प्रैक्टिकल लाइफ की कुछ बातें बता दी जाए। और यही रुककर मैं एक चीज वो कह रहा हूं जो मेरा अपना टॉपिक नहीं, यानी आज के मजलिस में आमतौर पर मैं इन मौजूदात पे बात नहीं करता हूं, क्योंकि इतने सारे मजलिस पढ़ने वाले उसी मौजू पे बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में बदतरीन दुश्मनान अहले बैत, उन्होंने एक शोशा उठा दिया शिया अजान के हवाले से। अब इसके बाद हमारे उलमा, हमारे खुतबा, हमारे जाकिरीन, हमारे स्पीकर्स वो उसका जवाब दे रहे हैं, और मुसलसल इस दो मिनट के उनके स्टेटमेंट की बिना पर हमारे बहुत सारे खतीब और जाकिर और उलमा के पूरे पूरे अशरे तैयार हो गए, और यह सिलसिला जारी। हता यह कि जहां पर, जहां का बज़ाहिर यह मसला नहीं है, यहां पर भी यह बात उलमा जवाब दे रहे हैं, क्योंकि बात तो कॉमन है अजान। अच्छा, अब यह अलग बात है कि असल जो उनका एतराज था वो तो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चला, और बहुत बाद में पता चला। उनका एतराज ये नहीं था दुश्मनान अहले बैत, चाहे वो औरंगजेब फारूकी हो या रब नवाज हनफी, बात तो उसने की थी शुरू में। उसका ये नहीं था कि अजान में अली वलीउल्लाह मत कहो, उसका था खलीफतहु बिला फसल मत कहो। वो खलीफतहु बिला फसल पे एतराज है कि अगर अली रसूल के बाद पहले खलीफा है तो जिनको हम पहला मानते हैं वो कहां गए। ये तुम डायरेक्ट हम पे टोंट कर रहे हो और हम पर एतराज कर रहे हो, दहशतगर्दी कर रहे हो। अली वलीउल्लाह को दहशतगर्दी नहीं कहा था उसने, खलीफतहु बिला फसल को। अली वलीउल्लाह को भी वो नहीं मानता, लेकिन उस वक्त जो उनका एतराज था वो ये था। और जवाब भी आप देखेंगे तो जवाब में भी, क्योंकि एतराज ही नहीं समझा, तो हमारे ज्यादातर स्पीकर ने जवाब अली वलीउल्लाह का दिया, जो उन्होंने मजाक उड़ा के कहा कि ये तो हमने एतराज किया ही नहीं था जिसका आप जवाब दे रहे हैं। और फिर बाकायदा उन्होंने खलीफतहु बिला फसल डे मनाया पाकिस्तान में कि ये है हमारा एतराज। अच्छा, बाद लोग इसमें इतना जोश में आ गए कि उन्होंने कुम और मशहद और करबला की अजान लगा दी अपने फेसबुक पेज पे, और वो जो अजान है उसमें खलीफतहु बिला फसल है ही नहीं, यही तो वो कह रहे हैं औरंगजेब फारूकी या रब नवाज हनफी या वो सारे दुश्मनान अहले बैत कि ये जो अजान तुमने अपने फेसबुक पे लगाई है ये अपनी मस्जिदों से दो, वो मत दो जो इंडिया और पाकिस्तान में दी जाती है। तो मैं कह ये रहा था कि बाज औकात बात को समझे बगैर जब कोई जवाब देने लगे, और वो आजकल बहुत हो गया। बहुत क्यों हो गया? क्योंकि हर एक को जल्दी होती है कि पहला जवाब मेरा आ जाए। ये जो ब्रेकिंग न्यूज की एक दौड़ मीडिया में लगी है ना कि सबसे पहली न्यूज हमारी, तो उसमें बाज औकात पूरी बात सुनते भी नहीं। अच्छा खैर, अब वो तो एक तरफ रहने दीजिए कि असल एतराज उनका कुछ और था, लेकिन ये हमको पता है कि वो अली वलीउल्लाह को भी नहीं मानते। अब यहां पे जवाब दिए जा रहे हैं। मैंने कहा ना ये मुझे बात करने की जरूरत नहीं, इसलिए कि इतने सारे उलमा और जाकिरीन और खुतबा इस पे बात कर रहे हैं, और अच्छा है ये जवाब देने से पता चल रहा है कि शिया कौम जिंदा है, और वह एक एक चीज दुश्मनों की समझती है और जवाब देने के लिए तैयार। मगर यहां मुझे सिर्फ एक नुकसान महसूस हो रहा, जो मेरा मौजू पहले से तैयार हो जाओ फ्यूचर के लिए, फ्यूचर को देखो और उसके बाद बात करो, वो एक मुझे एक नुकसान महसूस हो रहा है। मैं बहुत जल्दी इसको कह रहा हूं इसलिए कि ये मेरा अपना सब्जेक्ट नहीं होता। वो नुकसान क्या है? वो नुकसान ये है कि जिन लोगों ने औरंगजेब फारूकी हुए, रब नवाज हनफी हुए, जिन लोगों ने इस अजान पर एतराज किया, उनको भी पता, उनके ये एतराज करने से शिया अजान बंद नहीं होगी, उनको भी मालूम है। और जो हमारे शिया हजरात के जवाब दे रहे हैं उनको भी पता कि हम जितनी भी दलीलें लाएं गैर शिया अपनी अजान में इसको शामिल नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमारी अजान सही, लेकिन हमको ये पता है कि हम जितनी दलीलें कुरान से ले आए, हदीस से ले आए, गैर शिया हमारी दलीलों से कन्विंस होकर अली वलीउल्लाह अपनी अजान में नहीं लाएंगे। दोनों को पता है। फिर भी मैंने कहा जवाब जरूरी है ताकि पता चले जिंदा कौन है। लेकिन इसका एक नुकसान है और यह बड़ा खतरनाक नुकसान है, यह बहुत खतरनाक नुकसान है। यह फितना चंद साल पहले खड़ा हुआ, आजकल के हालात में थोड़ा दब गया, लेकिन अब जो जवाब दिए जा रहे हैं दोबारा यह फितना खड़ा होगा। वो क्या? एक दुश्मन अहले बैत कुरान हदीस सुनकर भी अली वलीउल्लाह अजान में नहीं लाएगा, और दुश्मन अहले बैत कितना ही प्रोटेस्ट कर ले कोई शिया अपनी अजान से इसको नहीं निकालेगा। तो अब यह मसला शिया और दुश्मन अहले बैत का नहीं, अब मसला हुआ खुद शियों का कि हां इस जो जवाब दिए जा रहे हैं इसकी वजह से हमारे मराजे के खिलाफ हमारे शिया हजरात एतराज शुरू करेंगे, और यह बिल्कुल हो रहा, पहले भी हो चुका है, और अब जो जवाब दिया जा रहा है इनकी वजह से यह एतराज मजीद होगा, मरजईयत के ऊपर हमला होगा शियों की जानिब से। उनके एतराज से दोनों फिरकों के अकीदे नहीं बदलेंगे, दोनों मकतबे फिक्र स्कूल ऑफ थॉट अपने अपने तरीके पे रहेंगे, मगर इस जवाब देने की वजह से एतराज है, जवाब की वजह से शियत के बारे में ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमारे बहुत से लोग बहक जाएंगे। कैसे? जितने जवाब दिए जा रहे हैं उनकी मेजोरिटी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने सारे जवाब तो नहीं सुने लेकिन जितने सुने वो अब जरा बहुत मुख्तसर, क्योंकि मेरा असल मौजू कुछ और है। मसलन ये जवाब दिया गया कि अली वलीउल्लाह इसके लिए, किसी ने कहा ना कि किस किताब में लिखा है, किताब मत देखे, मां की शराफत देखे। यह जवाब दिया गया कि अली वलीउल्लाह के लिए तो खून की पाकिजगी चाहिए। यह जवाब दिया गया कि अली अजान के एतराज अजान पे हो रहा है कि अजान में यह क्यों शामिल किया गया। जवाब यह दिए जा रहे हैं कि अली वलीउल्लाह के लिए तो गंदा खून वाला समझेगा ही नहीं। जवाब दिया गया कि अली वलीउल्लाह तो अजान की रूह है। अब ये सारे जवाब, अच्छा ठीक, इसकी वजह से वो कायल नहीं होंगे लेकिन इसकी वजह से नुकसान क्या होगा। ये सारे जवाब, फिर ये सारे जो जवाब दिए गए जो मैंने बताए और भी बहुत सारे, ये सब तो दलील बनेंगे कि फिर नमाज में भी अली वलीउल्लाह लेकर आओ। कहेंगे जी इसमें किताब मत देखो, खून की शराफत देखो, इसमें कहा जाएगा अगर खून पाकीजा है तो आदमी अगर अजान में अली वलीउल्लाह खून पाकीजा होने की बिना पर है तो नमाज में भी होना चाहिए। यह कहा जाएगा रूह अजान अली वलीउल्लाह है तो रूह अजान तो छोड़े, रूह नमाज अली वलीउल्लाह, इस दुनिया में एक नमाज नहीं बाकी होती अगर अली वलीउल्लाह ना होता। तो ये सारी दलील जो हम दुश्मन को दे रहे हैं, दुश्मन तो नहीं मानेगा मगर इसका नुकसान ये होगा कि फिर कुछ अरसे के बाद, फौरन नहीं, दुश्मन ने शोशा शायद इसलिए भी छोड़ा, फौरन नहीं, कुछ अरसे के बाद हमारे ही कुछ लोग यही दलीलें उठा उठा के नमाज के हवाले से कहेंगे उसमें भी अली वलीउल्लाह लाओ, अगर तुम्हारी माँ शरीफ है, अगर तुम्हारा खून पाकीजा है, अगर तुम रूह नमाज समझते हो। जितने जवाब हैं तो मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूं, मेरा असल मौजू नहीं। अच्छा अब कहेंगे लेकर आओ, यही जवाब देने वाले कहेंगे नहीं नहीं मराजे का फतवा नहीं है। कहेंगे मराजे क्या बेचते, मराजे की क्या हैसियत है, खून शरीफ होना चाहिए, रूह नमाज समझना चाहिए, ये इसके लिए गंदा खून नहीं जलेगा। वही सारे एतराजात आ जाएंगे और फिर एक बार नमाज में अली वलीउल्लाह वाला मसला, इस तरह का फितना बनेगा। मैं फितना इसलिए कह रहा हूं कि नऊज़ु बिल्लाह, इसको फितना नहीं कह रहा हूं, इसकी वजह से मरजईयत पे एतराज शुरू होता और सारे मराजे को मुकस्सिर, नासिबी, दुश्मन अहले बैत, फजाइल को न मानने वाला करार दिया जाता। चले आप मुझे कह लीजिए अगर मैं नबी रहा तो शियत को क्या नुकसान पहुंचेगा, मैं हूं तो फायदा क्या है, ना रहो, लेकिन अगर मरजईयत खत्म हो गई, और मैं ये देख रहा हूं कि ये जवाबात ऐसे हैं जो दोनों जगह पे फिट आ सकते हैं, जो अजान के लिए दलील बन रही है वही नमाज के लिए, दलील वो लेकर आइए कि जिससे नमाज तो साबित हो, जिससे अजान तो साबित हो, लेकिन नमाज पे कोई किसी किस्म का इख्तलाफ ना होने पाए, क्योंकि नमाज मसला नहीं बनेगा, नमाज के हवाले से मराजे मतलब पर एतराज और मरजईयत का खातिमा। तो ये वो कुरान का वही उसूल कि जो भी काम करो पहले सोच लो कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, कोई जवाब भी देने जाओ तो सोच लो कि ये जवाब जो मैं दे रहा हूं इस जवाब की वजह से कहीं और कोई नुकसान तो नहीं पहुंच जाएगा, दुश्मन के मुंह में तो लगाम पड़ जाएगी, मगर ऐसा ना हो कि जो एंटी मरजईयत लॉबी है और आजकल बहुत ही एक्टिव है उसको दलीलें मिल जाएं। अच्छा चले, ये वो लोग तो कहें जिनके पास और कोई जवाब ना हो, कहें क्या करें हमारे पास तो यही जवाब है, अब इससे अगर नमाज को नुकसान पहुंच रहा है तो पहुंचिए मर्जे को नुकसान। लेकिन हाँ, शियत के पास हर चीज के लिए अलग अलग दलील, हम बांझ नहीं है, हम जाहिल नहीं है, शियत के पास हर चीज की दलील है। तो कहने का मकसद यह है कि ये तो एक जिमनी बात इसलिए आ गई कि बहुत हॉट इश्यू, लेकिन इतने हॉट इश्यू को अगर गलत तरीके से टैकल किया गया तो इसका नुकसान हम ही को होगा पलट के। तो मैं तो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूं, यहां पे क्या एक होता है क्या बोम रिंग, वो ऑस्ट्रेलिया के जो कदीम बाशिंदे हैं एबोरिजिनीज एक ऐसा हथियार इस्तेमाल करते हैं, दुश्मन पे फेंकते हैं, वहां से वापस हमारे ही पास आ जाता। तो वो मसले को सही तरीके से टैकल करो, ये ऐसा ना हो कि चंद दुश्मनों को जवाब देते देते जो कायल नहीं होंगे तुम्हें भी पता अपने ही इतने अहम निजाम मर्जियत को नुकसान पहुंच गया। ये है वही उसूल जो कुरान ने कहा, हर काम से पहले सोच लो। और अब आइए जो असल में मुझे बात करना थी कि आका हुसैन मदीना छोड़ते वक्त ही करबला का जिहाद नहीं देख रहे थे, जिंदाने शाम में सकीना का मातम देख रहे थे, वहां तक मुझे ले जाना है। तो आइए अब मैं इस बात को छोड़ के, ये तो खाली मैंने इसलिए कहा कि बहुत ही अजीम मर्जी की बरसी की मजलिस है आयतुल्लाह खोई की, और एक अजीम मर्जी आयतुल्लाह सही तबा तबा हकीम उन्हीं के शागिर्द, उनका हाल ही में इंतकाल हुआ, तो थोड़ा सा इस हवाले से बात भी हो जाए, अगरचे आज की मजलिस में आगे चलकर फिर इस हवाले से बात होगी, लेकिन अभी आगाज। अब आइए कि मोमिन कैसा होता है, यानी पहले से वेल प्रिपेयर्ड होता, अपने हर एक्शन को देखता है कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, खाली स्टार्ट को नहीं देखता है, एंड तक को निगाह डालता है। इत्तकू फरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, हदीस है कि मोमिन की अकल से और फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है, तो वह आखिर तक देखता है क्या रिजल्ट निकलेगा। अबू सुफियान ने मौला से कहा कि आप इशारा करें पूरे मदीने को उन फौजों से भर दूं जो आपके फेवर में। मौला पर मौला और मौला से मुराद शहजादी कौनैन पर इतना बड़ा जुल्म हुआ, लेकिन मौला के लिए लफ्ज नहीं कह रहा, मोमिन का विजन ऐसा होना चाहिए कि वो देखे कि इसका एंड क्या होगा। स्टार्ट तो ठीक है, हो सकता है हमें हक मिल भी जाए, एंड क्या होगा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग इसमें चले स्टोरी भी सुन ले, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और मैं इसलिए इसको मेंशन कर रहा हूं कि इसमें जो एक मैसेज आया है ना वो फिर मेरी मजलिस के बीच का हिस्सा बनेगा। हंजला, हंजला ये मैदान ओहद की स्टोरी है, ओहद का मैदान बहुत अहम है, और करबला, और करबला में भी जो आज कल के डेट्स हैं, यानी अहले बैत शाम पहुंच चुके हैं सीरिया, ओहद यजीद ने दरबार में बैठ के कहा था आज मैंने अपने बद्र ओहद के बुजुर्गों का रिवेंज लिया, उसने पूरे करबला के वाकये को बद्र और ओहद से मिला दिया ओहद, और आका सज्जाद ने जो जवाब दिया था उसमें भी मौला अली के फजाइल बयान करते हुए कहा था बदरीयुन ओहदीयुन, मेरा दादा बदर में लड़ा, मेरा दादा ओहद में लड़ा, ये बहुत अहम लड़ाई है ओहद। इस ओहद की लड़ाई का एक शहीद है हंजला, और हंजला के साथ एक नाम और मैं लेता हूं जमीला। पता नहीं, मैं बहुत एम्बेरेसमेंट फील करता हूं जब ये जुमला कहता हूं, लेकिन कहना भी पड़ता, पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि 99% मोमिनीन और मोमिनात ने यह नाम नहीं सुना होगा जमीला। जब शुरू में मैंने जाकिरी स्टार्ट की थी, शुरू जाकिरी में, तो मैं मर्दों के साथ खवातीन की मजलिसें भी बहुत पढ़ता था, क्योंकि उस वक्त तक हमारे यहां खवातीन की मजलिसें पढ़ने वालियां वो ज्यादा इल्म नहीं रखती थी, वो अकीदत और सवाब में मजलिसें पढ़ती थी। अब तो माशाल्लाह जामियतुल ज़हरा कुम से फारिग तहसील इतनी खवातीन आ चुकी हैं कि अगर कि इसमें भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है जो इस मेंबर को खवातीन के हवाले से सही तरीके से संभाले हुए हैं। फिर भी इसमें गड़बड़ कुछ जगहों पे है खराबी, लेकिन वो एक अलग मौजू। तो मुझे याद है खारादर में, अगर कोई होगा खारादर का सुनने वाला, जुमा हाउस, डाका पैलेस, मदीना स्क्वायर, खवातीन के वजह से, तो इसी तरह मैंने मजलिस में यह वाकया पढ़ा, या उस वक्त पढ़ा था 75 में, या आज पढ़ रहा हूं 2021 में। ऐसे मैंने इसी स्टाइल कि भाई आप ऐसे किसी ने जमीला का नाम नहीं सुना होगा, एक खातून बोल उठी, बूढ़ी थी। हाँ हाँ वो चौथे माले पे रहती। तो खैर ये माले का लफ्ज ऐसा है जो बम्बई और कराची में फ्लोर के लिए इस्तेमाल होता है, वो फर्स्ट फ्लोर पे मजलिस और चौथे माले पे। मैंने कहा मैं उस जमीला की बात नहीं कर रहा हूं, तारीख इस्लाम में जमीला नाम की एक सहाबिया, पैगंबर की सहाबी। ये वक्त किसी तरह से रुक जाए, हंजला और जमीला। हंजला का नाम है हंजला, लेकिन इनका टाइटल है गसीलुल मलाइका। गसील कहते हैं कतील, कतील का लफ्ज आपने ज्यारतों में सुना है, कतील लबरात, आका हुसैन को कतील फुरात भी कहते हैं, जिसको कत्ल किया जाए। गसील जिसे गुसल दिया जाए, आमतौर पे आदमी गुसल खुद करता है, इनका टाइटल है गसीलुल मलाइका, जिन्हें मलाइका ने गुसल दिया। जब जंग ओहद खत्म हुई, और आपको मालूम है कि पैगंबर की जिंदगी में सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज जंग ओहद में हुई, और पैगंबर बे इख्तियार रोए, ये बे इख्तियार मुहावरतन कह रहा हूं, ज़ारो कतार रोए हैं जनाब हमजा पर भी और शहदाए ओहद पे भी। लेकिन जो वाजिबात है वो अपनी जगह, कहा कि मैयतों को दफन करो, पहले मैयतें लाके एक जगह जमा करो, फिर सब एक साथ दफन होंगी। जो मदीना मुनव्वरा में मैदान ओहद की जियारत कर चुके हैं वो मेरा जुमला समझ गए होंगे कि शहदाए ओहद की अलग अलग कब्रें नहीं बनाई गई है, एक कब्र में सब दफन है सिवाय जनाब हमजा के और उनके दो रिश्तेदारों के। तो कहा सब मैयतें लाके जमा करो, लोग मैयतें उठा उठा के ला रहे हैं। एक मरतबा घबराए घबराए लोग आए, कहा या रसूल अल्लाह, हंजला की मैयत को देख के हमें डर लग रहा। किस बात का डर? कहा कि या रसूल अल्लाह उनके बालों से पानी टपक रहा, खून तो समझ में आता है पानी, लंबे लंबे बाल थे हंजला के। या इस वक्त तो मेलबर्न में किसी के लंबे बाल नजर आए तो लॉकडाउन की वजह से सारे बार बार हेयर ड्रेसर बंद, लेकिन हंजला लंबे बाल रखते थे, जवान था, बिल्कुल जवान। अभी बिल्कुल जवान की तशरी अगले स्टेप में होगी। पैगंबर खुद गए, हंजला की मैयत को देखा और कहा कि हाँ मैं देख रहा हूं कि आसमान से फरिश्ते चांदी के बर्तन में जन्नत का पानी लेके आ रहे हैं और हंजला को गुसल दे रहे हैं। फरिश्तों ने इसको जन्नत के पानी से गुसल दिया, उनका टाइटल हो गया गसीलुल मलाइका। अब पूछा गया कि इतने सारे और भी ओहद के शहदा हैं, अव्वल तो शहीद के ऊपर गुसल नहीं होता, लेकिन ये अहकाम तो इस्लाम में बाद में आए, और इतने सारे हैं खाली इनको क्यों गुसल दिया, कहा ये इसकी बीवी बताई। खैर जब ओहद की लड़ाई से लोग वापस आए और मदीने पहुंचे तो उसकी बीवी से कांटेक्ट किया, उसकी बीवी का नाम जमीला, हंजला की बीवी। तो पता चला कि जो सूरह नूर की आयत नंबर 62 है वह इसी वाकये के बारे में नाजिल हुई। आयत नंबर 62 सूरह नूर, 62 का मतलब यह है कि बिल्कुल आखिरी आयतें, क्योंकि सूरह नूर में 64 आयतें, तो इसके बाद सिर्फ दो और आयतें, तो ये थर्ड लास्ट आयत है। बहुत अहम ये आयत है क्योंकि इसका इमाम जमाना से भी एक ताल्लुक है, और मेरे पास टाइम रहता नहीं है, बातें बहुत फैलती हैं। जरा सा आयत को पढ़ दूं, ये हंजला के लिए नाजिल हुई है बकौल अक्सर मुफस्सरीन। इन्नमल मोमिनून, जो आयत इन्नमा से शुरू होना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आयत अखीर भी इन्नमा से शुरू हुई है, इन्नमा युरीदुल्ला, आया विलायत कि मौला ने हालत रुकू में अंगूठी दी वो भी इन्नमा से शुरू हुई है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन, इन्नमा वाली आयत बहुत इंपॉर्टेंट। इन्नमा का तर्जमा होता है ओनली दोस, इस एक तरह से इन्नमा की आयत एक बाउंड्री बन जाती है कि इस आयत में कोई और एंटर नहीं हो सकता, ओनली दो। इन्नमल मोमिनून, कुरान ने कहा याद रखो मोमिन सिर्फ वो है, ओनली दो। तीन आयत, तीन खासियतें बताई, दो का ताल्लुक दिल से है, एक का ताल्लुक अमल से। अब यह आयत की तशरीह में कहीं बहुत वक्त ना गुजर जाए, जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनु बिल्लाह, मोमिन वो है जो अल्लाह पर ईमान रखता है दिल की बात, वह रसूल ही और रसूल पे ईमान रखता, वह इजा कानू माहू अला अमरिन जामेइन, बहुत अहम है ये टुकड़ा, और मोमिन वो है जो अल्लाह पर रसूल पर ईमान रखता है और जब रसूल के साथ किसी इज्तिमाई काम में होता है, कलेक्टिव काम जो एक आदमी के करने का नहीं है, सबके मिलके करने का है, लम यज़हबू हत्ता यस्ताज़िनू, वो रसूल को छोड़ के नहीं जाता है जब तक कि उनसे इजाजत न ले ले। इन्नल्लज़ीना यस्ताज़िनूका, जो लोग तुझसे इजाजत लेते हैं, उलाइकल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि व रसूलिह, वही मोमिन है। अब इसके बाद कुरान कहता है जो तुमसे इजाजत लेते हैं, व इज़स्ताज़नूका, जब वो तुमसे इजाजत ले, लिबाज़े शानहिम, अपने पर्सनल मैटर के लिए, शान कहते हैं काम, अपने काम, शानहिम अपने कामों के लिए, कोई दीन का काम नहीं है, इस्लाम का काम नहीं, अपना काम है, बिजनेस को जाके देखना है, गाड़ी को जाके देखना है, कहा जब ये लोग तुमसे इजाजत लें अपने काम के लिए, और मैटर क्या है, सारे मुसलमानों का कोई कलेक्टिव मसला, और वो आके कहते हैं कि हमें इजाजत दे दी, हमें फुला काम करना, हम जाना चाहते हैं, फाजन लेमन शेता मेनू, अरे अभी अभी ये तुम्हारी मर्जी, इनमें से जिनको चाहे इजाजत दे दो, ये रसूल की अथॉरिटी है, वस्तगफर लहुम, और उनके लिए इस्तगफार जरूर करो कि उन्होंने इतने ईमान का सबूत दिया कि तुमसे आके इजाजत ली। अब ये वो आयत है जो बता रही कि अगर कोई इज्तिमाई काम भी हो, तब भी अगर किसी आदमी का पर्सनल मैटर है, वो उससे अपने आप को एग्जेम्प्ट करवा सकता है, लेकिन खुद से नहीं, रसूल से। अब मैं इसको जल्दी से बात को समेटू, बहुत छोटी बात, हंजला ने जंग ओहद के मौके पर पैगंबर से इजाजत ली कि या रसूल अल्लाह बहुत खतरनाक जंग होने वाली है, लेकिन मुझे इस जंग से माफ कर दे, पूछा आगे, पैगंबर ने कहा चलो एग्जाम। उसामा जैद बिन हारिसा के बेटे, उम्मे ऐमन रसूल की कनीज के बेटे, जिनके लश्कर में जो शामिल नहीं हुआ उसको अल्लाह के रसूल ने लानत भेजी, सारे वीआईपीस को उस लश्कर में शामिल करके मदीने से निकलवा दिया था अपनी वफात के मौके पर, यही सफर के महीने में पैगंबर की वफात, लेकिन उनमें से कुछ नहीं जा रहे थे, तो पैगंबर ने कहा लाना था वो उसामा, उन्होंने मौला कायनात से कहा कि मौला मुझे सिफीन की लड़ाई में एग्जेम्प्ट कर दिए, वो भी एक वजह बताई, लेकिन वक्त कहां, मौला ने कहा अच्छा मैं तुम्हें एग्जेम्प्ट करता हूं। आका हुसैन जब मदीने से चले, सारे मदीने वाले बुरे नहीं थे, कुछ ने इजाजत मांगी एग्जेम्पशन की, बल्कि करबला में भी एक ने कहा था कि मौला मुझे कर्जा देना है या मेरा बेटा गिरफ्तार है, उसे कैसे रिहा करवाना है, मुझे करबला से माफ कर दे, आका ने कहा जाओ तुम एग्जेम्प्ट। और आखिरी जुमला कह दूं, देखिए ये आयत बहुत अहम आयत बनेगी इमाम जमाना के हवाले, जब इमाम जमाना आएंगे तब भी यही होगा कि जिन जिन को इमाम बुलाएंगे उनमें से कुछ रिक्वेस्ट करेंगे मौला हमें एग्जेम्प्ट कर दीजिए, लेकिन अपनी तरफ से नहीं, मौला से इजाजत लेंगे, इमाम जमाना कहेंगे हमने तुम्हें एग्जेम्प्ट किया। कुरान कहता है फाजन लिमन शेता मिनहु, अय हबीब ये तुम्हारी अथॉरिटी है, इज्तिमाई काम है, पर्सनल काम नहीं, अला अमरिन जामे, सारे मुसलमानों का काम है, लेकिन कोई इजाजत मांग रहा है, तुम्हारी मर्जी है, जिसको दिल चाहे माफ कर दो, एग्जेम्प्ट कर दो, और वस्तगफिर लहुम, फिर उनके लिए दुआ भी करो, नाराज नहीं हो उनसे, दुआ भी करो। हंजला पहला आदमी है जिसका अभी मैंने नाम लिया, नाम तो लिया जिसने मौला से इजाजत मांगी, तस्किरा किया जिसने आका हुसैन से इजाजत मांगी, तस्किरा किया जो इमाम जमाना से इजाजत मांगेंगे। पहला आदमी हंजला, ओहद की लड़ाई होने वाली, एकदम से काफिरों का लश्कर आ गया, मुसलमानों के सर पे पहुंच गया, वो पूरा रास्ता घूम के आए, एकदम पहुंच गया, पैगंबर को इत्तला मिली, पैगंबर ने जंग ओहद की तैयारी शुरू की, रात को इत्तला मिली, कहा सुबह सवेरे निकलना। हंजला आए रसूल के पास, कहा या रसूल अल्लाह मेरी तो आज ही शादी हुई और ये मेरी सुहागरात है, ये मेरी पहली रात है अपनी बीवी के साथ, अभी मैं गया भी नहीं वहां पे कि आपका ऐलान पहुंच गया है कि कल ओहद के मैदान में जंग करने जाना, यानी मैंने कहा था कि बहुत जवान है, बिल्कुल इनकी एज वो थी कि अभी अभी शादी हुई, मुझे एग्जेम्प्ट कर दी, इस जिहाद से मुझे माफ कर दीजिए, मेरी अभी शादी हुई है, सुहागरात गुजारना चाहता हूं। पैगंबर ने कहा अच्छा मैंने तुम्हें माफ किया, तुम जाओ। और यह आयत नाजिल हो गई कि कोई हरज नहीं है जब रसूल से इजाजत ली, ये चले गए अपनी बीवी के पास, सुहाग रात गुजारी, सुबह का वक्त आया, ये जुमला भी बहुत अहम है इमाम जमाना के लिए, याद रखिएगा, सुबह का वक्त आया, अब ये गुस्ले जनाबत करने जा रहे हैं, यहां दो रिवायतें मगर बहुत छोटा सा फर्क, ये गुस्ले जनाबत करने जा रहे हैं कि अचानक मदीना में यह खबर आई कि मैदान ओहद में मुसलमान शिकस्त खा रहे हैं, शहादतें हो रही हैं, कैजुअल्टीज बढ़ गई हैं, कुफारे मक्का का प्रेशर ज्यादा, बस ये जो सुनना था, अगर के रसूल एग्जेम्प्ट कर चुके, लेकिन जब ये सुना कि इस वक्त मुसलमानों को मदद की जरूरत है, ये उसी हालत में चले। बल्कि दूसरी रिवायत तो यह है कि इन्होंने गुस्ल जनाबत स्टार्ट कर दिया था, सरो गर्दन धोया था, अभी नीचे का जिस्म बाकी, गुस्ल जनाबत का तरीका तो नहीं बताऊंगा, इस वक्त स्टार्ट कर दिया है, पानी डाला है सरो गर्दन पे, ये पुराना जमाना नहीं है कि आपके शावर वावर में तो पूरा जिस्म गीला हो गया होगा, मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन है, पानी डालने में टाइम लगेगा, सरो गर्दन धोया है, अभी बाकी गुस्ल बाकी है, ये एकदम मदीने में खबर फैल गई, गलियों में लोग कहते हैं अरे मुसलमान हार गए, मुसलमान हार रहे हैं, मुसलमानों की शहादतें हो रही हैं, क्योंकि मैदान ओहद से भागने वाले सब पहाड़ पे नहीं गए थे, बहुत से भाग के मदीने आ गए थे। अब ये जो इनके कान में आवाज आई, गुस्ल जनाबत इनकम्प्लीट छोड़ दिया, मुसलमानों को इस वक्त मेरी जरूरत है, ऑल दो आई एम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जिहाद, मगर ये टाइम वो नहीं। इसी हालत में ये गए मैदान ओहद में पहुंचे, और ये वो वाहिद आदमी है जिन्होंने अबू सुफियान पे अटैक किया, और अबू सुफियान को गिरा दिया था घोड़े से, लेकिन पीछे से काफिर ने इन पे हमला करके इनको शहीद कर दिया। पैगंबर ने कहा इस पे गुस्ले जनाबत बाकी था, ये इस वक्त गुस्ले जनाबत की आलम में था, इसलिए फरिश्ते जन्नत से पानी लेकर आए और इसे गुस्ल देके गए ताकि बिल्कुल पाको पाकीजा होकर ये मैदान में जाए। ये हंजला, अच्छा मैंने एक लफ्ज और भी कहा था कि इमाम जमान रिवायत में, ये कभी सुनिएगा, मेरे पास तो वक्त ही नहीं होता है, इमाम जमाना जब आएंगे और बुलाएंगे ना, मोमिन को इसी तरह दौड़ के जाना कि अगर गुस्ले जनाबत स्टार्ट कर चुका है, वुजू स्टार्ट कर चुका है, अभी चेहरा धोया है, हाथ धोना बाकी है, इमाम आ गए, फौरन भाग के जाना है मक्के की तरफ, जिब्राइल की आवाज सुनते ही। लेकिन वो लोग जो इमाम को पहचान जाएंगे, अच्छा अब ये फिर बात से बात ना निकले, ये तो चले ये वाकया है, ये हंजला। अच्छा एक बात मैं बता दूं, हंजला का बाप इस्लाम के बदतरीन दुश्मनों में से एक है। अगर आप एक लिस्ट बनाए कि जब रसूलुल्लाह मदीने में आए थे, मदीने में तो टॉप ऑफ द लिस्ट पैगंबर के अपोजिशन में कौन लेते, हंजला का बाप अबू आमिर, मशहूर है ये, बल्कि मैदान ओहद में जो मुसलमानों को इतना नुकसान पहुंचा उसमें इसका भी रोल था। अब ये वक्त नहीं है, इसका बाप बेटा ऐसा, बेटे ने एक दफा रसूल से इजाजत मांगी थी, या रसूल अल्लाह मेरा बाप ऐसा दुश्मन है इस्लाम है, इजाजत दीजिए अपने हाथ से कत्ल कर दूं। कहा नहीं, मैं बेटे को इजाजत नहीं दे सकता कि वो बाप पे हाथ उठाए। खैर वो एक अलग वाकया। और इसकी शादी कहां हुई है, इस्लाम का सेकंड सबसे सख्त दुश्मन मदीने में, अब्दुल्ला इब्ने उबई, जिसका आज भी टाइटल है रईसुल मुनाफिकीन, तमाम मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला इब्ने उबई, उसकी बेटी जमीला थी, उससे शादी हुई। शौहर और बीवी ऐसे हैं और दोनों के बाप ऐसे हैं, ये इस्लाम के बदतरीन दुश्मन। अच्छा अभी तक मेरे मौजू से इसका रब नहीं मिला होगा, वो मिला रहा हूं, और वो ये कि जिस वक्त हंजला वो खबर सुनकर के मुसलमान मारे जा रहे हैं, शहादतें हो रही, भागे थे गुस्ल जनाबत इनकम्प्लीट छोड़कर, जैसे ही वो जा रहे थे, जमीला ने अभी अभी शादी हुई, 12 घंटे भी पूरे नहीं हुए, अभी सुहाग रात गुजरी है, शौहर का दामन पकड़ ली, एक मिनट ठहर जाओ, ये एक मिनट तो मैं कह रहा हूं, जो भी कहोगे एक दकीका, जल्दी से पड़ोस के घर से चार मर्दों को बुला के लाए, बाद रिवायतों में चार औरतों को, लेकिन हमारी किताबों में चार मर्दों को, और कहा कि आए हंजला इन चार मर्दों के सामने गवाही दे के जाओ कि तुमने मेरे साथ पूरी सुहाग रात गुजारी है। और हंजला ने कहा हाँ हाँ पूरी सुहाग रात गुजारी है, वो चारों ने सुना और हंजला चले गए, जिनको इतनी जल्दी थी कि गुस्ल जनाबत कंप्लीट नहीं किया, लेकिन बीवी ने पकड़ लिया, का वक्त ज्यादा नहीं लूंगी लेकिन ये गवाही दे के जाओ, गवाही दे के चले गए। बाद में लोगों ने कहा कि आखिर ये नॉनसेंस किस्म के काम की जरूरत क्या थी, वहां मुसलमान मारे जा रहे हैं, लाशें गिर रहे हैं, कुफारे मक्का का दबाव बढ़ गया है, हंजला उनकी मदद के लिए गुस्ल छोड़ के जा रहे हैं और तुम रोक रहे हो। कहा कि नहीं, इसलिए कि मुझे यह डर लगा कि इस शादी इस रात के नतीजे में अगर मेरे औलाद पैदा हो गई तो बाद में अरब के लोग ये ना कहें कि वो हंजला तो मैदान में लड़ने चले गए थे, ये बेटा कहां से आया, जमीला ने कोई गुनाह किया, ये हंजला का बेटा नहीं है, मैं कैसे प्रूफ करूंगी। डीएनए वेने तो होता नहीं उस जमाने। मैंने सुना है कि इंडिया की कुछ फिल्में इसी भी थीम इसी प्लॉट पे बनाई गई कि मुझे वो सुहागरात गुजारने गए और सुहागरात गुजारी और अगली सुबह को मर गए के गायब हो गए। अब उसकी बीवी की औलाद हुई, पूरे खानदान ने उसको बाइकाट करके सड़क पे फेंक दिया कि औलाद कहां से आई। जमीला देखी, अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक की बेटी है, रईसुल मुनाफिकीन की, लेकिन इतनी समझ है कि पहले गवाही अपने शौहर से ली और उसके बाद फिर शौहर को मैदान जिहाद में जाने दिए। और वाकई हुआ भी ये कि इसी रात के नतीजे में जमीला के यहां बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अब्दुल्ला रखा गया। शायद अब आपको याद आ गया हो या शायद ना याद आया। करबला के वाकये के बाद जब मदीने के लोगों ने अपराइजिंग की थी और यजीद के खिलाफ वो जंग की थी जिसके नतीजे में फिर यजीद ने अटैक किया और सब कुछ हुआ, उसके अंदर अपना लीडर किसको बनाया? इसी अब्दुल्ला इब्ने हंजला को, इसी जमीला के बेटे को, जिसके लिए जमीला ने अपने शौहर से मैदान जाते वक्त गवाही ली थी। तो अब बाकी तो इस वाकयात में इसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारे मैसेजेस, लेकिन बात वो थी जो मेरा मौजू है। पहले से फ्यूचर की तैयारी, इतनी समझ थी मुनाफिक की बेटी को जो मोमिन की बेटी को समझ नहीं, जो मोमिन के बेटे को समझ नहीं, कि पहले से समझ लो कि इसका नतीजा क्या कुछ निकल सकता। और यही इस्लाम के बहुत सारे वाजिबात की फाउंडेशन है ये उसूल। वसीयत के मसाइल हमारे यहां आते हैं कि नहीं आते? मीरास के मसाइल हमारे यहां आते हैं कि नहीं आते? फिका के बहुत सारे ऐसे मसाइल आते हैं कि नहीं आते जिसमें फ्यूचर की प्रिपरेशन कराई जा रही। वसीयत क्या? वही जमीला की तरह का मसाला कि अगर मेरे शौहर का इंतकाल हो गया तो उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम पैदा हो सकते हैं, अगर मेरी बीवी का इंतकाल हो गया तो उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम पैदा हो सकते हैं, अगर मेरे बाप की डेथ हो गई तो उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम पैदा हो सकते हैं, अगर मेरे बेटे की डेथ हो गई। जरूरी तो नहीं है ना कि बाप ही पहले मरे, अगर पहले बेटा मर गया तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसमें सबसे इसका सोल्यूशन जो सबसे फेमस है वो तो वसीयत है, लेकिन और भी इसमें बहुत सारे सोल्यूशन है। मैदान उहद में मुनाफिक, बल्कि सबसे बड़े मुनाफिक, अब्दुल्ला इब्ने अबी उबई की बेटी को इतनी मालूमात है जो आज एक सैदानी को भी नहीं होती, जो आज एक सैयद को भी नहीं होती, और अगर होती है तब भी इतनी लापरवाही होती है कि इसके लिए कोई तैयार होके नहीं बैठता। और इसी को अब जरा सा आगे बढ़ाइए और मसले को मैं यहां तक पहुंचा दूं कि हमारे यहां वसीयत की जब बात आ गई और मीरास की बात आ गई। अच्छा, मीरास में मैं एक अजीब जुमला आज कहने जा रहा हूं, और यह जुमला हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को शॉकिंग लगे, लेकिन वही बात के मेरी बात सुनते कितने लोग हैं। जितने मजलिसे ऑस्ट्रेलिया में आप सब में जाके देखिएगा तो सबसे कम व्यूवर्स आपको मेरे ही मिलेंगे, और वही मेरे लिए बेहतर है ताकि प्रॉब्लम भी जरा कम ही रहे। लेकिन एक बात कह रहा हूं, मगरबी दुनिया में, वेस्टर्न कंट्रीज में, शौहर के मरने के बाद उसकी जायदाद बीवी को दिलवा दी जाती है अनलेस ये के कोई विल हो। चले वो तो छोड़े, विल एक रास्ता, लेकिन अगर तलाक हो जाए तब भी बीवी को आधी चीजें मिल जाती है। उसके डिटेल है कानून में, इतना अरसा रहे हो साथ में और इतना अरसा सेपरेशन। मैं कोई लॉ की क्लास तो नहीं ले रहा हूं। अब उसके अंदर मैंने ये देखा कि हमारे अक्सर मजलिस पढ़ने वाले जिनकी फिक्र बहुत कमजोर होती है, और आजकल बहुत कमजोर है, क्लिप मैं देख रहा हूं यूट्यूब के ऊपर, ऐसे ऐसे गलत सलत मसाइल बयान हो रहे हैं कि मेरा तो दिल ही यह चाहता कि सब छोड़ छाड़ के मैं अपने घर में बैठ के यूट्यूब का अपना चैनल शुरू करूं खाली मसाइल वाला। लेकिन खैर, तो उसमें अक्सर यह कहा जाता कि औरत के लिए यह हराम है अगर उसको तलाक या डिवोर्स के नतीजे में शौहर की आधी जायदाद मिल रही है तो शरण ये जायज नहीं। अगर इंडिया का कोई आदमी सुन रहा है तो उसको याद होगा कि शाह बानो केस में जब इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था तो इतना प्रॉब्लम बना के राजीव गांधी को बाकायदा राज्य सभा और क्या लोकसभा से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कराना पड़ी कि मुसलमान नहीं मान रहे इस चीज को कि वो तलाक मिल गई तो तलाक वाली औरत को भी कुछ दिया जाए। बहुत बड़ा एक इशू था और वो अब तक है, मौजूदा हुकूमत उस अमेंडमेंट को खत्म करने की फिक्र में लगी इंडिया की। मैं तो बहरहाल ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूं और पाकिस्तानी हूं, लेकिन ये सुन लीजिए कि अक्सर कहते हैं कि जी औरत के लिए तुम्हारे लिए हराम है, शरण तुम्हारा हक नहीं है। गलत, मीरास में भी और तलाक में भी। अगर फिक्री मसला सुनेंगे तो हमारी औरतों को जितना मिलता है शायद उससे भी ज्यादा मिलना चाहिए। मेरा ये जुमला सुन के अमल ना कीजिएगा, इसकी डिटेल उलमा से पूछिएगा, और अगर कभी अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मुझ तालिब इल्म से भी डिटेल सुन लीजिएगा, लेकिन मसाइल न जानने का नतीजा। लेकिन अभी बाकी बातें तो मैं बाद में बयान करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक से मुझे 5 मुसलसल मजलिसों का मौका मिल रहा। आजकल तो ये है ना कि एक मजलिस होती है, सारी बातें उसमें नहीं आ सकती है। तो वसीयत, मीरास, ये सब है फ्यूचर प्रिपरेशन। हंजला के वाकये से मैं रब देके यहां तक आ रहा हूं, तो एक आखिरी बात अर्ज करके फिर इसको मुकम्मल करूं और जनाब सकीना के जिहाद पर आ जाऊं। और वो ये है कि हमारे यहां एक बहुत बड़ी खराबी इस हवाले से ये हो रही कि नाबालिग, नाबालिग उसके माल के हवाले से इंतहा से ज्यादा लापरवाही, खास तौर पर उन वेस्टर्न कंट्रीज में जहां वेलफेयर सिस्टम है, जहां बच्चे को खुद हुकूमत की तरफ से कुछ मिलता। अब शरई मसला तो मैं अगर आपको 2-3 बताऊंगा तो वक्त बहुत गुजर जाएगा, इशारा कर दूं। और वो यह है कि मसलन बच्चे की बर्थडे पर उसके लिए 15 गिफ्ट आए, 5 उसके लिए रख लिए, 10 बांट दिए, बड़े भाई को दे दिए, उसी के बड़े भाई को, या ये कि चचा के बेटे को दे दिया, ये कहा रख लो किसी मुनासिब मौके पे किसी रिश्तेदार को देंगे, क्या शरण जायज है? ये तो हराम हो गया। बच्चे का हक, माँ बाप को भी इख्तियार बच्चे में मुकम्मल नहीं होता। अच्छा, मैं अजीब जुमला कह रहा हूं, अजीब तो नहीं, आजकल कहा जाने लगा बाप को तो फिर भी कुछ इख्तियार है, माँ को तो बिल्कुल इख्तियार नहीं, और सारा इख्तियार यहां माँ इस्तेमाल करती है। बात नामुकम्मल रहेगी लेकिन सुन लीजिए, हमारी शिया तारीख जो मराजे है ना, मराजे, अगर टॉप के मराजे की एक लिस्ट बनाई जाए उसमें एक बहुत अहम नाम आता है। ये टॉप के मराजे में टॉप 10 तो नहीं कह सकता लेकिन टॉप 20 में आते हैं, सैयद मेहदी, जिनका टाइटल है बहरुल उलूम। और इतनी ये बड़ी पर्सनालिटी थी कि इसके बाद इनकी पूरी फैमिली ही कहलाती है आले बहरुल उलूम, इराक में बहुत ही काबिल एहतराम खानदान, सैयद मेहदी। 2 साल मक्के में रहे और मक्के के गैर शिया आलिम कहते थे कि हमने सुना है कि आखिरी जमाने में एक मेहदी आने वाला है, हमें तो ये वही लगता, इल्म इतना था, तकवा इतना था। ये गैर शिया को इनके ऊपर इमाम का धोखा हो रहा है, बहुत बड़ा इनका रोल है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की शियत पर भी इनका एक एहसान है। इन्हीं के शागिर्द थे जनाब गुफरान माब, सैयद दिलदार अली, जिनकी वजह से शिमाली हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में, अब हैदराबाद का मसला तो हमेशा ही से अलग रहा, सही मानों में शियत पहुंची, अखबारियत खत्म हुई। सैयद मेहंदी हमारे 2 मुज्तहिदीन में से एक, हमारे हर मर्जी की इमाम जमाना से मुलाकात हुई, वो फिर वाकयात का एक सिलसिला। मगर उनमें 2 ऐसे मर्जे जिनके बारे में कहा जाता है कि ये इमाम जमाना से मुलाकात तो करते थे लेकिन जब इनका दिल चाहता था, बाकी हर मर्जे से इमाम की मुलाकात हुई है जब इमाम का दिल चाहता, मर्जे की मर्जी से नहीं होती है मुलाकात, जब इमाम चाहते। ये 2 थे कि जब इनका दिल चाहता था इमाम जमाना के खिदमत में पहुंच जाते थे। एक है मुकद्दस से अर्दबेली, जो आज भी मौला के जरिए के पाई थी, लेफ्ट साइड के ऊपर उनकी कब्र है, और दूसरे है सैयद मेहदी। अजीब गरीब शख्सियत, बहुत इमाम की रहने का, जिस आदमी को ये चांस मिले कि जब चाहो तुम इमाम से मिल सकते हो, वो कितनी मर्तबा मिला होगा। नजफ में, ये बहुत पुराने नहीं है, 1212 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ, 1212। अब जरा याद रखिए, 4 में बहुत अहम सन दे रहा हूं, 1111, 1111 में अल्लामा मजलिसी का इंतकाल हुआ, 1212 में सैयद मेहंदी का, 1312 में वो आगा शिराजी जिन्होंने तंबाकू हराम होने का फतवा दिया, 1412 में मरहूम आयतुल्लाह खुई जिनका शुरू में जिक्र हुआ। ये सैयद मेहदी बहरुल उलूम मर्जे भी हैं और इमाम जमाना से मुलाकात की वजह से एक बहुत अजीम रूहानी शख्सियत। नजफ में एक आदमी था, उसने, वाकया लंबा ना हो जाए, उसने उसको किसी काम से नजफ से बाहर जाना था, एक बहुत कीमती अमानत इनके पास नजफ में एक आदमी के पास रखवाई जो जरा सा ट्रस्टवर्दी था। वो गया, जब वापस आया तो पता चला वो आदमी मर गया। रकम छोटी तो नहीं थी, घबरा गया, वो तो मर गया, अब मैं क्या करूं। उसके घर गया, घर वालों से पूछा, उन्होंने कहा हमें कोई खबर नहीं। सीधा सैयद मेहदी के पास आया जो खुद नजफ में उस वक्त मर गए, और आके कहा यह मसला है। उन्होंने कहा कि खास दुआ मुझे इमाम जमाना ने बताई, वो मैं तुम्हें बताता हूं। जाओ उस आदमी की कब्र पे खड़े हो, नजफ में जो मरता है वादी सलाम में दफन होता था, वादी सलाम में जाओ उसकी कब्र पे खड़े हो, ये दुआ पढ़ो, तुम्हारा मसला हल हो जाना चाहिए जिस तरह इमाम ने ये दुआ मुझे बताई। ये गया उस कब्र पे जाके खड़ा हुआ, घर वालों से ये तो पता चल गया ना वो कहां दफन है, कब्र पे गया ही दुआ पढ़ी। अब ये ना सो रहा है ना जाग रहा है, एक कैफियत होती है जिसे कहते हैं मुकाशफा, कश्फ, सो भी नहीं रहा है आदमी, पूरे जाग भी नहीं रहा है। देखा कि कब्र खुली और कब्र से कफन पहन के निकला, कौन निकला भाई, ये तो उस आदमी को पहचानता है ना जिसको अमानत दी थी, वो नहीं निकला, कोई और निकला है। जैसे आप किसी के घर में 15 साल के बाद जाए, नॉक करे, पता चले कि ऑनर चेंज हो चुका है, कोई और आदमी निकल आए, कोई और कब्र से निकल आए, अरे अभी तो इसको मरे हुए 1 हफ्ता हुआ होगा, 10 दिन। घबरा के पूछा तुम कौन हो, आदमी चकरा जाए ना कि ये कौन निकल आया मेरे बाप की कब्र से, तुम कौन हो। कहा कि मैं हिल्ला का रहने वाला मोमिन, तुम यहां कैसे आ गए। कहा मैं वहां दफन था, लेकिन जैसे ही पहली रात आई मेरे पास फरिश्ते आए, मलाइका नकाला कहते, उन्होंने कहा खुदा ने तुम्हें हुक्म दिया है, हमें हुक्म दिया है कि तुम्हें वादी सलाम में ट्रांसफर करें। ये रिवायत में भी है कि मोमिन कहीं भी मरता अच्छा है तो वादी सलाम में जाता, तो मुझे यहां भेजा गया। इस आदमी ने कहा जो यहां वाला था, कहा उसे मेरी कब्र में भेजा गया। तुम्हारी कब्र कहां, कहा हिल्ला के फला महल्ले में, मेरा घर है, घर वालों से पूछ लेना। खैर बस खत्म बात, वो वापिस गया कब्र में, कब्र बंद हो गई। ऐसा कराची में तो अक्सर होता है, हमने अपने बाप को दफन किया कहीं, अगले हफ्ते गए मालूम हुआ कोई और दफन, वो गए बाप साहब, बाप गए, वो जो केयर टेकर है या अंडर टेकर, उसने वो कब्र भेज दी किसी को, वादी सलाम में तो नहीं हो सकता ना। सैयद मेहंदी के पास आया, कहा ये देख कर आया हूं, वो भी जरा चकराए, मर्जे हैं इमाम जमाना के दोस्त मर्जे, लेकिन जरा चकराए। कहा ये तो अजीब बात है, जब ऐसा करो कि यही दुआ उसकी कब्र पे पढ़ो, हिल्ला जाओ। अब नजफ से हिल्ला कितना दूर है, ये हिल्ला पहुंच गया, घर वालों से एड्रेस लिया कब्र का, कब्र थी किसी और की, वहां जाके दुआ पड़ी, एकदम कब्र खुली, वही आदमी निकल आए जिसको ये ढूंढ रहा। घबरा के पूछा कि भाई क्या हालत है, कहा बहुत बुरी हालत, बहुत बुरी हालत है, अजाब में पड़ नहीं रहा हूं, पहले ही बदनाम हूं अजाब वाला मौलाना, और बदनाम हो जाऊंगा तो अभी इतना ही रोक दीजिए, बहुत बुरी हालत। तो कहा कि लेकिन अल्लाह का एक मेरे ऊपर एहसान, वो एहसान क्या है कि अल्लाह ने तुम्हें भेज दिया। कहा मैं तो अपने काम से आया, मेरी अमानत का फुला जगह जमीन में मैंने दफन की थी, पुराने जमाने में यही होता था, वहां से ले लेना, लेकिन एक एहसान और कर दो, मेरे घर जाकर मेरी बहन से मुझे माफी दिलवा दो। और ये कह के वो चला गया कब्र। अब ये वापस नजफ आया, जहां का उसने पता बताया था, वो जगह खोजी, अमानत मिल गई, लेकिन एक वादा करके आया था। चुनांचे सैयद मेहदी के पास गया और कहा कि उस कब्र में ये नजफ वाला आदमी वहां नजर आया और उसने ये कहा। सैयद मेहदी ने कहा अच्छा चलो मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ, उसकी बहन से बात करेंगे। उसके घर पहुंचे, बहन इतना बड़ा मर्जी आया, अगर सिसानी के किसी के घर में पहुंच जाए उसकी क्या हालत होगी, खुशी के मारे एक तो उसकी कोई खुशी की इंतहा ना रही, घर में बिठाया क्यों आए। कहा कि वो तुम्हारे भाई को इस हालत में देख के आए, कुछ अजाब भी बताया। उसने अच्छा है, इस पर तो इससे भी ज्यादा अजाब आना चाहिए, बहन भाई के बारे में कहो, 200 साल पुरानी बहन कहे, आज तो बहन खुद भाई का टेंटवा दबा दे, खासतौर पर अगर कोई जायदाद वायदाद का मसला हो, लेकिन 200 साल पहले, इससे भी ज्यादा आना चाहिए भाई, क्यों इससे ज्यादा अजाब आना चाहिए। कहा कि ये इतना ऑनर किलिंग वाला आदमी जो होता है ना, मेरे शादी के रिश्ते पे रिश्ते आ रहे थे, मगर हमारा खानदान हर जगह शादी नहीं करता, सारे रिश्ते इसने ठुकरा दिए, मेरी शादी नहीं होने दी, अब देखिए मैं बुढ़ापे में दाखिल हो गई, इसे हक क्या था मेरे मामले में बोलने का। सैयद मेहंदी ने कहा लेकिन भाई बुरी हालत में, कहा आप मर्जी हुक्म देते हैं तो मैं माफ कर दू, कहा नहीं हुक्म नहीं देता हूं, लेकिन फिर थोड़ा समझाया, आखिर उसने माफ कर दिया। यहां मसला बना, कि बाद औकात एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार में अपना वो हक समझता है जो है ही नहीं, खासतौर पर शौहर बीवी के रिश्ते में, खासतौर पर नाबालिग के रिश्ते में। अब इसको इसको मुझे बहुत ज्यादा एलोबरेट करना था लेकिन अब वक्त खत्म हुए, 2 मिनट हो चुके हैं और अभी गम का बयान बाकी है, तो बाकी बातें इंशाल्लाह अरबईन का जो खमसा है उसमें 5 मजलिसों में इसमें से कुछ बातें मजीद आगे बढ़ेंगी। ये वाकया याद रखिएगा, करीबी रिश्तेदार को भी एक दूसरे पे एक हक और इख्तियार नहीं है, खास तौर पर नाबालिग अगर है तो सिवाय बाप के, न माँ को, न बड़े भाई को, न चचा को, न मामू को, तब बाप मर जाए तब भी नहीं। और जो कुछ हमारे यहां हो रहा सब ला इल्मी में हो रहा, वरना वो मां जो अपने आप को कुर्बान कर दी अपनी औलाद पर, वो क्या अपने बेटे पे जुल्म करेगी? लेकिन ला इल्मी में जुल्म हो रहा। वरना बहरहाल दुनिया कितनी ही खराब हो जाए, अभी भी माए औलाद की खातिर हर कुर्बानी देने को तैयार, बाप तो सोच भी नहीं सकता है जो मां कुर्बानी देती। हां अगर करबला की मां हो तो बात दूसरी, करबला की मां हो तो वो अपनी औलाद को अपने हाथ से कुर्बान कर दे, लेकिन दीन के लिए, किसी ऑनर किलिंग पे नहीं, अपने किसी एरोगेंस पे नहीं, अपने किसी ईगो पे नहीं। अजीब माए थी करबला की, लेकिन लेकिन करबला में सबसे ज्यादा गमगीन मां कौन थी? हर मां खुश थी, सबसे ज्यादा गमगीन मां कौन थी? शबे आशूर आका हुसैन, खाली मर्दों का इम्तिहान नहीं लिया, वो तो बहुत मशहूर है हमारे यहां कि नमाज मगरिबैन हुई फिर आका ने चिराग गुल करके करबला के मुजाहिदों का इम्तिहान लिया, वो ठीक है। आधी रात के करीब आका ने करबला की बीवियों का भी इम्तिहान लिया, और वो इस तरह से कि आधी रात तक सब इबादत कर रहे हैं, आका हुसैन भी इबादत कर रहे हैं, आधी रात के बाद अपने मुसल्ले से खड़े हुए अपने हुजरे से बाहर आए। अभी तो ऑस्ट्रेलिया में इतने रिस्ट्रिक्शन है, वरना सारी दुनिया से जायरीन करबला मौला का रुख कर रहे हैं और खेमागाह की जियारत कर रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया के भी हर मोमिन और मोमिना ने हाल ही में पिछले 8-10 साल में खेमागाह की जियारत की है, बिल्कुल दरमियान में आका हुसैन का खेमा है, अपनी अपने खेमे से बाहर आ, हर तरफ सन्नाटा और सुकूत है, सिर्फ जिक्र खुदा की आवाजें आ रही, सिर्फ तिलावत कुरान की आवाजें आ रही। एक एक खेमे का जायजा लेते चले, इन बीवियों को भी तो देखूं, लेकिन खेमे के अंदर नहीं जा रहे, और हर बीवी बहुत खुश और कल के जिहाद के लिए अपनी कुर्बानी तैयार कर रही। हाँ, जो मां की फितरी मोहब्बत है वो अपनी जगह, फरवा को देखा, कासिम को अपने सामने तैयार करके बिठाया है और कह रही है कासिम तेरी मां सैदानी नहीं, ऐसा ना हो कल के जिहाद में तू बच्चा है डर जाए तो लोग कहें ये फरवा के दूध की खराबी। आगे बढ़े, उम्मे लैला का खेमा नजर आया, मां की गोद में सर रखे 18 साल का जवान लेटा है और मां अपनी उंगलियों से 18 साल जवान के बालों में कंघी कर रही है, दूसरे हाथ में शमा या मोमबत्ती है, चेहरे की जियारत कर रही है। लाल मां एक मर्तबा और तेरे चेहरे की जियारत कर ले। ज़ैनब कुबरा के खेमे के करीब से गुजरे, देखा ऑन बहुत छोटा है, मोहम्मद बहुत छोटा है, दोनों को सामने बिठाया है, एक के सर पे उनके दादा जाफर तैयार का मामा रखा है, एक के सर पे उनके नाना हैदर करार का मामा है, और उन्हें कभी दादा के कारनामे बता रही, कभी खैबर ओहद के कारनामे बता रही, और कह रही है लेकिन बेटा जब कल तुम फुरात पर कब्जा करना तो माँ दूध ना बख्शेगी अगर असगर से पहले तुमने पानी पी लिया, मेरा असगर आसा रहे और तुम पानी पी लो। आका की आंखों में भी आंसू आ गए, एक एक खेमे को देख, हर बीबी के खेमे की यही कैफियत है, हर बीबी के लेकिन सिर्फ एक खेमा ऐसा जहां बीबी खुश नहीं है, तैयारी नहीं कर रही है, रो रही है, और ऐसा रो रही है कि आवाज खेमे से बाहर आ रही। हुसैन ने देखा यह खेमा रबाब का है, एक मरतबा खेमे में दाखिल हुए, देखा असगर के गहवारे पे सर रख के रबाब रो रही है। हुसैन ने कहा रबाब क्या बात है, खैरियत तो है, असगर तो ठीक है? रबाब ने तड़प के कहा मौला मेरा असगर सलामत तो है मगर मैं इसी बात पे रो रही हूं। जब मेरी आपसे शादी हुई तो मैंने अपने आप को कायनात की सबसे खुशकिस्मत औरत समझा कि अल्लाह अल्लाह, मैं मोहम्मद मुस्तफा के घर में आई, मैं फातिमा जहरा की बहू बनी, मैं अली मुर्तजा की बहू बनी, जवाना ने जन्नत का सरदार मेरा शौहर करार पाया। फिर अल्लाह ने मुझे औलाद देना शुरू की, बड़ी औलाद बच्ची थी, उसके बाद ये असगर पैदा हुआ, फैमिली कंप्लीट हो गई ना, बेटा भी हो गया, बेटी भी हो गई। मैंने सोचा मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं है, लेकिन आज मैं अपनी बदकिस्मती पे रो रही हूँ। हर बीवी को देख रही हूँ, वो अपनी कुर्बानी तैयार कर रही है, कल ये शहजादी फातिमा के सामने सुरखरू जाएंगी, लेकिन हाय रबाब, खाली हाथ जाएगी, इसलिए कि जो चलने के काबिल है वो लड़की है, और लड़कियां मैदान में जाती नहीं है, और लड़के अगर मैदान में जाते हैं तो मेरा असगर इतना कमसिन है कि घुटनों के बल चला के भी नहीं ले जा सकती। अरे कल के जिहाद में मेरा कोई हिस्सा ना होगा, मुझे नहीं मालूम मेरे आका ने क्या जवाब दिया, लेकिन मैं होता, आप होते, हाथ जोड़ के कहते ना, शहजादी अरे आप ये क्या कह रही हैं, आपकी औलाद तो ऐसा जिहाद करेगी कि सकीना जिंदाने शाम में रोकर नामे यजीद को दाखिले दुश्नाम कर देगी, और असगर का जिहाद ऐसा होगा दुनिया अब्बासो अकबर के जिहाद को भूल जाएगी। करबला के मैदान में रबाब ने असगर को खो दिया, नन्ही सी कब्र बन गई, और अब शाम के कैद खाने में रबाब अपनी सकीना को लेके पहुंच गई है। हाय वो नन्ही बच्ची, हाय वो नन्ही बच्ची जो सारा दिन और आधी रात तक कैद खाने में रोती है। हाय मेरे बाबा, हाय मेरे चचा, हाय मेरे भैया अकबर, भैया कहाँ हो? अब यही उसका मातम है, यही उसकी गिजा है, यही उसका आराम है, वो नन्ही सकीना। एक दो जुमले, रिवायत नहीं पढ़ रहा, वक्त नहीं है, दो जुमले। तारीख में लिखा है जब मोहम्मद की नवासी शाम के कैद खाने में मरी तो उसे जले हुए कुर्ते में दफन किया गया, लहू भरे हुए कुर्ते में दफन किया गया। ये जला हुआ कुर्ता तो वो रिवायत है कि शाम गरीबा जब आखिरी खेमा जला था और सारी सैदानियां बाहर आई थी तो सबसे आखिर में नन्नी सकीना आई थी। आज का मौजू नाबालिग था ना, नाबालिग थी, मगर कुर्ते में आग लग रही है, किसी नामहरम को करीब नहीं आने दे रही। मैं फातिमा की पोती सकीना हूं, ना मेरा मेरा जिस्म नहीं छू सकता। वही जला हुआ कुर्ता पहन के शाम में आई, जरा अंदाजा करें, सैदानियों के पास, ज़ैनब कुबरा के पास एक लिबास दूसरा नहीं है जो अपनी बच्ची का कुर्ता बदले। और लहू भरा हुआ कुर्ता कौन सा है? वो रिवायत जो आप सुनते हैं कि जब सकीना को ऊंट पर बिठाया गया था और सकीना गिर गई थी तो ज़ैनब ने कहा था, ऐ शिब्र, यह बच्ची अकेले ऊंट पे नहीं बैठ सकती, इसे मेरी गोद में बिठा दे वरना फिर गिरेगी। और शिमर ने कहा था, ये बच्ची अब नहीं गिरेगी, अब नहीं गिरेगी। और क्या इंतजाम किया था? एक रस्सी लेके आया था, सकीना को ऊंट की पीठ पे लिटाया था, रस्सी से नन्ही बच्ची के बदन को ऊंट से बांधा था। और अरब का ये ऊंट जब दौड़ता था तो बाबा के नर्म सीने पर सोने वाली सकीना का सारा जिस्म इस तरह जख्मी होता था कि जब शाम में यह काफिला पहुंचा, सकीना का सारा बदन जख्मी है, सारा कुर्ता खून से भरा हुआ है। यही खून भरा हुआ कुर्ता पहन के, यही जला हुआ कुर्ता पहन के सकीना ने जिंदा ने शाम में आज रात तक की कैद गुजारी। मगर आज रात आ गई, सकीना का मातम बढ़ गया, यजीद ने हुसैन का कटा हुआ सर भिजवाया, और यह कटा हुआ सर जैसे ही सैदानियों के सामने पहुंचा, जैसे ही ये कटा हुआ सर जिंदान, अल्लाह आपको उस कैद खाने में ले जाए। आज तो आपको बहुत शानदार कैद खाना नजर आएगा, मगर ये लहू, मगर ये कटा हुआ सर पहुंचा, जैसे ही बीवियों की निगाह पड़ी, बीवियों ने क्या किया जो आप करेंगे, सारी बीवियां अपनी जगह से खड़ी हो गई, कटे हुए सर का रुख किया, पहले तो आका की जियारत पड़ी, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्ने रसूलुल्लाह। फिर ज़ैनब ने कटा सर सकीना की गोद में दिया, नन्ही सकीना झुकी, और तारीख लिखने वाले ने कहा कि आज तारीख उल्टी हो गई, हमेशा हुसैन झुक के बच्ची का बोसा लेते थे, आज बच्ची झुक के बाबा का बोसा ले रही है। बाबा जरा देख, तेरे बाद मुझ पर कितने जुल्म हुए, मेरे नुकसान तमाचे खाते खाते नीले पड़ गए, मेरा बदन कोड़े खाते खाते सिया पड़ गया, और एक मरतबा मेरे कान जमा हुआ खून, और एक मरतबा बच्ची चुप हुई और कहा, बाबा मैं तो अपनी फरियाद कर रही हूँ, तू
मुझसे ज्यादा जख्मी है, अरे तेरा गला कटा है, अरे तेरी रीशे मुबारक तेरे खून से भरी है, अरे तेरे होठों पर अब तक यजीद की छड़ी के निशान है। और फरियाद करते करते बच्ची चुप हो गई, बच्ची खामोश हो गई। ज़ैनब घबराई, सज्जाद बेटा जरा मेरी बच्ची को तो देख, सगीना को क्या हुआ? सज्जाद, मेरा मौला सज्जाद, मेरा आका सज्जाद, आबिद बीमार आगे बढ़ा। खुदा किसी जवान भाई को छोटी बहन की यह हालत न दिखाए। एक मर्तबा सकीना का बाजू थामा, पलट के फूफी को देखा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। फूफी अम्मा, मेरी बहन सकीना मुझे छोड़ के बाबा के पास चली गई। गसाला को बुलाया तो गया, मगर वो चीखे मारती भी बाहर आ गई। अरे इस बच्ची पे कितना जुल्म किया, सारा बदन जख्मी है। और आका सज्जाद जिंदाने शाम में नन्नी बहन की मैयत लेके बढ़ रहा। वो जरी आपको याद होगी जो आपने शाम में देखी है, उसी के नीचे वो नन्नी सी कब्र तैयार की। आका सज्जाद अपने हाथों से सकीना को कब्र में उतार रहा। मैंने रिवायत में नहीं देखा, मगर मेरा दिल कहता है कि कोई ताज्जुब नहीं है इस मौके पर कब्र से दो हाथ बाहर आए हों और फातिमा जहरा की आवाज आई हो, सज्जाद बेटा बस तेरा इम्तिहान पूरा हुआ, अपनी बच्ची को लेने मैं आई हूँ। फातिमा आई है, ला मेरी बच्ची को मेरे हवाले कर। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। परवरदिगारा वो वक्त जल्द अज जल्द ला के हम दोबारा हमारी खवातीन शहजादी सकीना के ताबूत को बरामद करके अपनी सारी हाजतें भी पेश करें और अपने आंसुओं का नजराना भी इस प्यासी बच्ची को पेश करें। खुदावंदा मसाइब सकीना का वास्ता सकीना के चाहने वालों और चाहने वालियों की सारी हाजतें पूरी फरमा। सकीना का वास्ता हर साहिब ईमान को औलाद के हर सदमे से महफूज फरमा। लेकिन दीन को जरूरत हो तो हर बाप और माँ को अपनी औलाद कुर्बान करने का जज्बा अता फरमा। खुदावंदा इन मजालिम के इंतकाम के लिए इमाम में जमाना के जहूर में ताजील फरमा। अब हम और आप जनाब सकीना का मातम करेंगे, मातम।